अल्लाह ताला आएगा, कुरान में भी तुम्हारी सिफत, शास्त्रों में तुम्हारी सिफत, अभावी नो भविष्यंती मुनियों ब्रह्म रूप न, कि ब्रह्म मुनि जब जगत के अंदर आएंगे उनके पास ऐसा ज्ञान पार ब्रह्म क्षातीत देगा, उनके कारण से पार ब्रह्म क्षातीत आएगा। तो किनकी सिफत गाई गई भाई, ब्रह्म मुनियों की या और किसी की? स्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपनी सिफत नहीं किसी ग्रंथ में गवाई, मैंने हर ग्रंथों के अंदर तुम्हारी महिमा गवाई, तुमको इतना ऊंचा रखा, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी शान सारे ग्रंथ देख रहे हैं, सारी दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, कि आए मुक्त देशी ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनिया राह देखत मुक्त देशी, ब्रह्मांड को कौन ब्रह्म सृष्टि राज्य ने आए ब्रह्म मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, जो परम धाम की सत ब्रह्म आत्माएं हैं वो संसार को मुक्ति देंगी। स्वामी जी कहते हैं जरा दुनिया के ग्रंथों को देखो तो सही जाके, एक तो तुम्हें माया में से निकाला, चरणों में लिया, सब कुछ तुम्हारे ऊपर बख्शिश की और तुम्हारी गुण से वह सारे संसार के ग्रंथ गा रहे हैं, और अभी तुम कहते हो हमारे कर्म अच्छे और राजी ने हमें मुसीबत में डाल दिया, ऐसी कोई अच्छे कर्म दे भागा ना जा क्या ऐसी? विचार करके देखो और जवाब दो तुम कौन हो?
दो नहीं अक्षर जागो तुम्हें,
दो अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहता हुआ है। क्यों भाई सपने के ब्रह्मांड में बैठे हो के परम धाम में जा तो देते चलो जरा दिल मेरा भी खुश होता रहे। स्वामी जी कहते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में परम धाम में बैठा हुआ है 7:30 बजे प्रणाम चांदनी चौक में करके लौट आता है, लेकिन ये नहीं जानता कि परम धाम की सखियां क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, खिलवत खाना क्या है। जो ज्ञान अक्षय ब्रह्म को नहीं, वो ज्ञान सारा ला करके मैंने तुमको दे दिया है। अब तुम्हारे जीव, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो तुम हो नहीं, अब स्वामी जी कहते हैं तुम्हारा जीव बड़ा कि अक्षय ब्रह्म बड़ा? जवाब तो दो भाई, जीव बड़ा। तुम्हारे जीव को भी मैंने इतना बड़ा कर दिया है, इतनी महिमा तो तुम्हारे जीव की ऊंची कर दी है, और फिर अभी कहते हो कि मैं अक्षातीत नहीं, और तुम अपने आप को कहते हो कि हम जीव सृष्टि। सोचो और विचार करके मुझे आज जवाब दो, तब कदम आगे बढ़ाया जाएगा। और क्या ये किससे? जागृत हृदय, परम धाम का जागृत ज्ञान, जो गीता में लिख दिया खाली विष्णु ने कि अर्जुन मेरी दो शक्तियां हैं, एक अपरा और दूसरी परा, पर पराशक्ति का वर्णन कर नहीं सकता। ओ पराशक्ति को जागृत बुद्धि कहते हैं, वो ला के कुल खजाना मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है, और इस बुद्ध के साथ खाली जागृत बुद्ध नहीं दी, साथ तातम मेरा आवेश कलेजा, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, तुम्हारे दिल को मैंने आके अर्श बना रखा है, पर मैं करूं क्या, तुम मेरे से बातें ही नहीं करते। स्वामी जी कहते हैं हर मोमिन के दिल के अंदर, जागनी का प्रकरण खोलो 17वीं चौपाई पढ़ना, बुद्ध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, के जहां जागृत बुद्ध और तातम होता है, पहले मेरा आवेश उस हृदय में मैं प्रवेश करके बैठ जाता हूं, पर जब सुंदर सा तातम तो ले ले, और कभी राजी से बातें करी ना, राजी की वाणी बैठ के पढ़े ही ना, राजी कहते मैं तो तेरे घर बार आया बैठा हूं, पर तुझे मेरे से बात करने की जब फुर्सत ही नहीं है तो कसूर मेरा क्या है? और सारे कुल परम धाम की हकीकत ला के तुम्हें मैंने ला के समझा दिया है। सौ वतन किसका है? जीव सृष्टि का है कि परम धाम का? संयम का है, सौ वतन संयम का तुम्हारा है, इसलिए तुमको ला करके दिया है और इस जगह जाहिर किया, नहीं तो ये दुनिया के बाद से जाहिर हुआ था, करोड़ों बार दुनिया बन गई, बन के मिट गई, और इसके बाद भी बनती रहेगी और मिटती रहेगी, पर किसी को भी परम धाम का पता ना लगा तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते ला करके इस दुनिया में ये सारा ज्ञान जाहिर किया है।
राम अंदर की
बंद करता टाइम। हाँ क्योंकि लंबा पेगा
इन बुद्ध संग तारतम सब कही हकीकत धाम
श्री राज जी महाराज वो धाम के धनी परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत अब बता रहे हैं कि वो मेहर कृपा जो है वो क्या चीज होती है जो हमें नजर नहीं आती। तो दो तरह से बताई कि एक कृपा होती है बातूनी और एक कृपा होती है जाहिरी। जो बातूनी मेहर होती है वो केवल ज्ञान के द्वारा वाणी से समझी जाती है और जो मेहर जाहिरी होती है वो वजूद के ऊपर शरीर के ऊपर जितनी कृपा उस परमात्मा की राज्यम राय की है वो होती है। तो मोमनों को यकीन दिलाने के लिए बता रहे हैं कि आज दिन तक जब से दुनिया बनी बड़े बड़े वेदों ने कतेबों ने गीता ने भागवत में रामायण ने किसी भी ग्रंथ के अंदर परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है धाम क्या है स्वरूप क्या है और लीला क्या है किसी ने बताया नहीं। मूल वेदों ने भी नीति नीति करके कहा इसी तरह से हर ग्रंथों ने आखिर में यही बात कही कि चुड़ाइस जब 28वां कलयुग आएगा तो परब्रह्म अक्षातीत तो स्वयं आएंगे। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि जिन बातों के लिए वेदों ने नीति नीति करके कह दिया राम भगवान ने कह दिया मैं नहीं बता सकता विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने पूछा तो 7 कल्पांत 84 86 युग तपस्या करने पर भी परब्रह्म अक्षातीत के स्वरूप का पता उन्हें नहीं चला। तो दुनिया वाले जितने भी देवी देवता या गुरु धर्मों के हैं वो किनकी बताई बनाई हुई किताबों को लेकर के चलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। इसलिए दुनिया आज दिन तक ये ना जान सकी कि परमात्मा का नाम क्या है उसका स्वरूप क्या है उसकी लीलाएं क्या है और वो करता क्या है रहता कहाँ है। स्वामी जी कहते हैं कि वो सारा ज्ञान धाम अंदर का परम धाम का नाम श्री राज जी महाराज का स्वरूप उनका श्रृंगार और एक एक अंग स्वरूप नूर तत्व से बना हुआ और वो है क्या और फिर उससे अतिरिक्त परम धाम के अंदर खेलमस खाने की वो बातें जो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है वो ला करके सारा खजाना मैंने तुमको दिया है। आप बताइए स्वामी जी कहते हैं कि आज दिन तक ब्रह्मा ने क्यों नहीं वेदों के अंदर परब्रह्म का नाम लिखा गीता के अंदर क्यों नहीं विष्णु भगवान ने इतना ही अर्जुन को कह के कह दिया कि उत्तम कि अगर तू भव सागर से पार होना चाहता है तो केवल एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत है लेकिन नाम क्या है किसका स्मरण करें कोई पता नहीं। आखिर महाभारत के 16वें अध्याय उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ में कह दिया कि अर्जुन वो ज्ञान मैंने कहा नहीं था कहलवाया गया था मैं नहीं जानता परब्रह्म का नाम क्या है धाम क्या है और स्वरूप क्या है लीला क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि जिस बातों का पता अक्षर ब्रह्म को नहीं है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनने बनाए हैं इनकी उत्पत्ति हुई है तो इनके पास वो ज्ञान कहां से आ जाए और वो ज्ञान सारा परम धाम का ला करके मैंने तुमको दिया तो ये मेहर नहीं तो क्या है। अगर ये कर्मों का फल मिलना होता तो सबसे पहले ये ज्ञान तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास आना चाहिए था लेकिन आप अपनी तरफ स्वामी जी कहते हैं छांक करके हम सुंदर सा देखें हम कितने खोटे से खोटे कर्म कर रहे हैं छल करते हैं कपट करते हैं झूठ बोलते हैं कई जाने ना जाने अंदर ही अंदर क्या कुछ हम लोग करते हैं लेकिन फिर भी वो संबंध जो है वो आत्मा के साथ है और इन कर्मों को माफ करने की शक्ति संसार के किसी देवी देवता के पास नहीं है। सब यही कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे लेकिन परब्रह्म अक्षातीत श्री प्राणनाथ जी ने आकर के कहा नहीं इन पापों को काटने का ही जो शक्ति है वही तात्म ज्ञान है जो ला करके मैंने तुमको दी है जिसके द्वारा तुमको परम धाम के जर्रे जर्रे का खिलवत खाने का उस परब्रह्म के स्वरूप का जो बातें गीता में नहीं थी जो बातें रामायण में नहीं थी जो बातें वेदों ने नहीं कही जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता था वो सब ज्ञान तुमको दिया किस लिए कि तुम्हारी आत्म परम धाम के अंदर है। अगर ये निस्बत ना होती तो ये ज्ञान तुम्हें नसीब हो जाता। तब स्वामी जी ने सबसे प्रश्न किया अब वो पर्दा भूल का आया था, शरीर से वो हट गया।
वो सपन के जीवों को,
स्वामी जी कहते हैं क्या वो सपन के जीवों को फिर आज दिन तक पता चलता? जिन बातों का पता रामायण भागवत गीता के अंदर भी पता नहीं है, हालांकि आजकल महाभारत चल रही है, अभी जब कंस को मारा तो नारायण ने आके दर्शन दिया, और सारा झूठ। उस समय कौन सी शक्ति थी? गौलोक की शक्ति थी, पर क्या करें, महाभारत में भेद नहीं लिखे। व्यास जी को ही जिन बातों का पता नहीं, तो बेचारे अब ये जो नाटक बना रहे हैं टीवियों के अंदर, वो कहाँ से लेकर के आए? वो सहारा तो इन्हीं ग्रंथों का लेकर के चलेंगे। लेकिन अब तातम के द्वारा पता चला कि उस समय 11 दिन की जो लीला हुई वो किसने की? गौलोक की शक्ति ने की। वो नारायण नहीं थे, वो गौलोक के बालमुकुंद जी की शक्ति जो है उसके अंदर बैठ करके काम कर रही थी, और वो वहां का श्राप लगा हुआ था कि तू 5 बार ऐ दामा इसी कृष्ण के हाथों से मरेगा। और वो लीला अब दुनिया क्या जाने कि रावण कौन था, कंस कौन था, नालार्जुन कौन थे, मुष्टावक वगैरह कौन थे, और ये सारी चीजें जो हैं वो गौलोक का लगा हुआ श्राप इस जगत में आकर के भोगेंगे, और भोग करके फिर वो दामा वापस जाएगा। अब ये भेद कहाँ किसी को पता है? अगर है तो क्यों नहीं बताया आज दिन तक? स्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान दुनिया में थाना ही अब आया था, और आना ही ब्रह्म सृष्टि के वास्ते था। ब्रह्म सृष्टि के बिना दुनिया सुनेगी ही नहीं, जानेगी ही नहीं कि ये किस पार ब्रह्मक्षातीत का ज्ञान है। ए मेहर जीवों पर नहीं, ईश्वर सृष्टि पर नहीं, या ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर नहीं, ये परम धाम की उतरी हुई जो आत्मा है, केवल वही इस ज्ञान के द्वारा गीता भागवत वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल सबको जो आज दिन तक एक करने की शक्ति कोई धर्म रखता नहीं है, हम सबको एक करते। कुरान हमारा है, कोई भी मक्के मदीने का काजी भी खोल करके उसके मायने नहीं बता सकता। बाइबल के सारे भेद खोल करके तातम से हम कह सकते हैं, जो अमेरिका का पादरी भी खोल करके नहीं बता सकता। वेद शास्त्र गीता भागवत सारे ग्रंथों को एक करने की शक्ति उस पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी की वाणी को ही लेकर के गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को एक रास्ते पर लगा रखकर और बिन खून बहाए देश की एकता को किया। और आज अगर यही ज्ञान सारे विश्व के अंदर छा जाए, कोई आतंकवाद नहीं रहेगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा, सब मानव समझेगा कि हम सब एक हैं, हमारा धर्म एक है, क्योंकि परमात्मा सबका। लेकिन अब कोई जानता ही उस एक को नहीं है, तो हर कोई अपनी ढपली बजा के जुदा जुदा जो है राग गाए जा रहा है। अब सबों पाई लिखी है के वक्त आखरत को सारे ब्रह्मांड को जब ये ज्ञान मिलेगा तो किन की सोबत से? मोमिनों की कृपा से। जब मोमिन जगह जगह जाकर के, हर जगह जाकर के, गांव गांव जाके, नगर नगर जाकर के इस वाणी की चर्चा सुनाएंगे, तो दुनिया जो इसके काबल है, पात्र है, जिनके दिल निर्मल हैं, जो पापों से बचे हैं, जो शराबों से मीठों से बचे हैं, जिनकी आत्म निर्मल है। नहा लेने से आत्म निर्मल थोड़ी होती है। अब 2 करोड़ आदमी जा रहे गंगा नहाने से, तो क्या आत्मनिर्मल हो जाएगी? स्वामी ने कहा कि एक पानी शरीर को जरूर निर्मल करता है, साफ करता है, स्वच्छ करता है, आदमी में चुस्ती आती है, स्फूर्ति आती है, लेकिन अंदर निर्मल करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन पानियों के मुक्त नहाने से और चुबकियां लगा लेने से तो कई किसी का जो है आत्मनिर्मल नहीं होती है। ए समय हक्के किया, स्वामी जी कहते हैं ये मेहर श्री राजीव राय ने इसलिए की क्योंकि अब वो पार ब्रह्म कभी अपनी आत्माओं से जुदा नहीं हो सकता। भले गलती आत्माओं ने की खेल मांग करके कि हमें मायरा दिखाओ, पर राजी तो जानते कभी ये इस वाणी के बिना दुखी हो जाएंगे। और संसार में जाकर के जीवों से भी साफ वाणी में लिखा है कि तुम जाते रहे हो उस ब्रह्मांड में, लेकिन तुम जीवों से भी बुरे कर्म करोगे। क्यों? वहां के रहने वाले जीवों को तो पता है कि जैसा कोई कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं पता होगा, इसलिए कई कर्म तुम्हारे से जीवों से भी नीच कर्म कर बैठोगे तुम। लेकिन घबराना नहीं, बस एक कर्म ना करना कि अलस्तो बेरब हुक्म बस। जैसे पत्नी से हजार नुकसान हो जाए, मियाँ माफ कर सकता है, उसका खामन माफ कर दे। क्या हो गया, क्यों रो रही है, नया बना देंगे, क्या हो गया, और ले आऊंगा, तुझे क्या चिंता है, मेरा तो नुकसान हुआ, घबराओ नहीं। सब किस्म की माफी जो है पति कर सकता है, लेकिन अगर पति वेश्या भोग ही करने लग जाए, पति को छोड़ करके किसी और कोई यार बना करके बैठ जाए, तो भंगी भी और धोबी भी। राम के राज के अंदर धोबन को घर से निकाल दिया था, जिसके कारण से सीता बिचारी को दोबारा बनोने जाना पड़ा। ये चीज राजीव राय ने कहा था कि ए मोमनो, शरीर के किए हुए तुम्हारे कर्म होंगे ना, सब माफ कर दूं, क्योंकि मुझे पता है। राजी कह रहे, मुझे पता है तुम उस दुनिया में जा रहे हो जहां तुम्हें जीव के ऊपर बिठाना है, और जीव नीच से नीच कर्म करता है, क्योंकि वो कर्मों की उत्पत्ति से हुआ है। संतों से होते हैं, बड़ों बड़ों से होते हैं, देवी देवता आते हैं, उनसे भी कर्म हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, मैं आकर के जगत के अंदर गीता ग्रंथों के प्रमाणों से बता दूंगा कि पार ब्रह्म क्षति थी जो है, वो ही जो है तो हमें छुटकारा दे के भव से पार कर सकता है। इस वास्ते तो पापों की तो चिंता करना नहीं। एक बात का याद रखना कि मुझे छोड़ करके और किसी के चरणों में, अगर तुमने धनी और बना लिया, अपना खबंदी ही कोई और बना लिया, तो फिर मैं तुम्हें आगे क्या खाक बख्शूंगा। ये चीज, ये पाप जो है तुम कभी ना करना, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। अब रूहों को और चिढ़ लगती है, राजजी महाराज आप ऐसे हमें कह रहे हो कि क्या हमारी अकल बिल्कुल ही, हम ऐसे रूखे हो जाएंगे कि अकल बिल्कुल मारी जाएगी। वो कहते वो यहाँ नहीं बात करो, वो वहां जब जाओगे ना, और तुम्हें जीवों पर बिठाया जाएगा। और अब हुआ ऐसा, राजजी महाराज आए, आकर के समझाते हैं, वाणी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझाइया समझे नहीं और माने नहीं। फरमान कहे, कौन तुम, कौन हम, कासो अपनी पहचान। अरे कौन राजी, किसने पारब्रह्म देखा है, ये नए प्रणामी अपना ज्ञान बना करके बैठ गए हैं, ये कहती है दुनिया। और वो दुनिया के अंदर कौन कहने वाले, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ कहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं, विचार करके देखो कि मैंने तुम्हें माया से निकाल के चरणों में ला करके पारब्रह्म अक्षातीत का ज्ञान, वो खिलवत खाने का ज्ञान जो अक्षर को भी पता नहीं, तुम्हें ला करके दिया है, तो किस तुम्हारे कर्मों के फल से, या तुमने कोई भक्ति की थी? नहीं, फकत एक ही सन्मन से कि तुम्हारी आत्मा परम धाम की है, और वो निस्बत है जिस कारण से तुम्हें माया से निकाल करके चरणों में बिठा करके और सारा खजाना अब अर्श का ला करके परम धाम का मैंने तुमको दे दिया है। अब तुम्हारे हाथों से सारी दुनिया को ये बख्शिश होगी, और इस वाणी की बरकत से जो है 14 तबक भी अखंड होगा, सबको मुक्ति मिलेगी। अब स्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने इस वाणी को वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, गीता से, भागवत के प्रमाण ले ले करके समझा, और समझ करके किन के चरणों में आ गया, कि भी जब सारे ग्रंथ कहते हैं कि उत्तम पुरुष पारब्रह्म अक्षातीत के बिना और कोई परमात्मा है ही नहीं, और उसने समझ करके पारब्रह्म अक्षातीत का चरणों में आ गए और उसके साथ संबंध जोड़ लिए, तो वो भव सागर से पार। बाकी जो हमने संसार में सगे संबंधी सारे जोड़ रखे हैं, ये तो तब तक है जब तक सांस आ रहा है, सांस के बाद कौन जाएगा, कैसा परिवार होगा, रोज आंखों से देख रहे हैं, कौन परिवार, किसका खानदान, किसका पति, किसकी पत्नी, मट्टी उठाकर जला देती है, कोई विचारता है, कोई सोचता है, आखिर हम कौन हैं, मरने के बाद भी तो आखिर कोई ठिकाना होगा, कहाँ जाएंगे, किस घर की जाके कुंडी घनकटाएंगे, क्या मनुष्यन इसीलिए मिला है, नहीं, भाव सागर से पार होने के लिए मिला है। स्वामी जी कहते हैं, ये तुम्हें अगर ज्ञान दिया है तो केवल एक नाते के कारण से, कि परम धाम का नाता जो मेरा तुम्हारा अखंड है, आत्मा कभी भी परब्रह्म से जुदा हो नहीं सकती, इसलिए चरणों में लेकर के ये सारा वास्ते तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारी कृपा से तुम आगे ये ज्ञान जो है जगह जगह जब जा करके सुनाओगे, सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। बस बस जिसको समझ लग गई वही आ गया, आके तात्म ले लिया। अब लोग समझे प्रणामी हो गए जी, प्रणामी हो गए जी, प्रणामी हो गए। भाई पहले समझ तो लो, आगे सुन तो लो, प्रणामी है क्या? प्रणामी वो है जो केवल सत्य की पूजा करते हैं। और दुनिया क्या है? जो केवल झूठ की पूजा करती है। क्या गंगा का पानी अब इन 20 दिनों में स्पेशल कोई आएगा? सारा साल चलता है तब वो मुक्ति नहीं दे सकता। और अब 1,000, 2,000, 4,000 की जान 6 तारीख को देख लेना, 7 तारीख का पेपर उठा के कितने मरे, क्योंकि 6 तारीख को मावस खास है और उस दिन का कुंभ जो रात को नहा लेगा उसको क्या मिलनी है? मुक्ति। ये पंडों ने शोर मचा रखा। अब 2 करोड़ की संख्या में आप बताइए, 20 किलोमीटर दूर तक कोई बस नहीं, तांगे नहीं, सवारी कुछ भी अलाउड नहीं। पहले तो 20 किलोमीटर चल के आओ, फिर जरा सी भी लग गई भीड़ और खुदा न खास्ता कोई एक आदमी गिर गया, फिर एक नहीं मरा करता। पिछले साल भी 1,000 आदमी दब के ही मर गया था, हो गई ना उसकी तो गंगा माता की जय। पर देखा देखी अब वो करें क्या? अब उनके पंडे अगुए गुरु जब शिक्षा ही दे रहे हैं कि इस रात को नहाओ 1 बजे तब मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति तो किसी को नहीं मिली। मुक्ति का अर्थ ही कोई नहीं जानता। मुक्ति का अर्थ है कि दोबारा आवागमन का चक्कर हमें ना मिले। और वो देने की शक्ति किसके पास है? केवल अक्षातीतोत्तम पुरुष के बिना, और किसी के पास ये शक्ति ही नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जितने भी हैं ये तो माया के वरदान देने वाले हैं और माया की चीजें देने वाली है। स्वामी जी कहते हैं फिर जिसने पारब्रह्म अक्षातीत को पहचान के तात्म ले लिया और उससे अपनी आत्मा का संबंध जुड़ गया, फिर उसको दुनिया में कमी क्या है? जिसका संबंध आत्म का धनी, आत्म का स्वामी, वो पारब्रह्म अक्षातीत हो गया, फिर उसको कमी क्या है? यहां से लेकर के वहां तक का सब सुख उसको प्रदान होता है। पल पल उसके ऊपर जो है हर तरह से कृपा होती है। और फिर राज्य महाराज की मेहर से ही ये वाणी अब किसी से सीखनी नहीं पड़ती। गीता तो किसी से सीखनी पड़ेगी, संस्कृत का ज्ञान, रामायण तो किसी से जाकर के सुननी पड़ेगी, भाषा ऐसी है, वेदों के मायने तो किसी से जाके पूछने पड़ेंगे। पर स्वामी जी कहते हैं ये वाणी जो है ये मोमनों के दिल के ऊपर बिना कलम लिखी हुई है, क्योंकि उनके अंदर जागृत बुद्ध और मैं अर्श कर करके बैठा हुआ हूँ। एक एक बात के भेद जो है, एक हक इलम की बारीकियां हक के लिए आवत, ना सीखे ना सिखाए, हक मेरे से भाई। जब उसके साथ संबंध हो जाएगा, हम तारतम लेकर के अपनी आत्मा का नाता उनसे जोड़ लेंगे, तो फिर वो हमारे ऊपर मेर नहीं करेगा, तो करेगा किसके ऊपर? मेर आई किन के वास्ते? वास्ते मोमनों के। तो जब मेर आई हमारे वास्ते है और लाया हमारा खामन है, तो देगा किसको? पड़ोसियों को जाएगा। आज किसी पत्नी का पति फॉरन जाता है और स्पेशल स्पेशल चीजें लाता है, सीधा घर लेके आएगा कि पहले पड़ोसन को देने जाएगा? सोचिए और विचारिए। स्वामी जी कहते हैं कि जो आत्म से विचार के परब्रह्म अक्षातीत के साधन मन जोड़ेगा, और केवल इस युग में वो जो परब्रह्म अक्षातीत आए हैं और परम धाम की सब विध वतन सहित सारा खजाना, सब नियामतें, सब मेहरे, सब कर्म उठा के ले आए हैं, किनके वास्ते? वो जो जुदा जुदा डिब्बे बांध के लाए हैं किनके वास्ते लाए हैं? स्वामी जी कहते हैं सिर्फ मोमिनों के वास्ते। अब मोमिनों के आ जाने के कारण से केवल मोमिनों के उतरने की जो कृपा हुई है, इस कृपा के बदले में दुनिया को क्या इनाम देना? दुनिया को इनाम देना है, बख्शिश देनी है। परम धाम का सुख नहीं दुनिया को देना, उनको तो मोमिनों के चरण कमल इस धरती पर रखे हैं। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रह्म साक्षात आए, ब्रह्म सृष्टि आई, इस कारण से दुनिया को इनाम बख्शना है। स्वामी जी कहते हैं मैं दूं भी तो क्या दूं? यूं समझ लीजिए कि जैसे को गर्भों खरबों और खरबों से भी खरबों पति हो और उठा के एक नया पैसा किसी को दे दे तो क्या दिया उसने भाई? एक नया पैसा अपने खजाने में से दे तो क्या दिया? कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। यूं समझ लो कि ये दुनिया को भी जो मुक्त करना है राजीव राय ने, ये अपनी मेहर में से एक पैसा नया दिया, उनके वास्ते एक नए पैसे के समान भी नहीं है। क्यों? अक्षय ब्रह्म को हुक्म ही तो देते हैं, बनाओ, बन गया, मिटाओ, मिट गया। अब क्या करना है? इनको खत्म करो, और खुद नहीं करेंगे, करवाएंगे, अक्षय ब्रह्म के हाथों से करवाएंगे। और हमारे जीव जो है वो साथ बैठे हुए होंगे, उनको पहले बेहिष्ट में बैठेंगे। दुनिया यही समझेगी कि साक्षात यही ब्रह्म सृष्टि आई थी, फिर भी पर्दे में रखेंगे, और हमें कहां पहले भेजेंगे? परम धाम में। फिर कायम दुनिया को जो है करके आठ बहिष्ठों में डाला जाएगा।
ये तो
स्वामी जी कहते हैं कितनी बड़ी कृपा है, जरा तोल के मगन में विचार करके देखो कि ये कितनी बड़ी मेहर है। और अब मेहर है जाहिर, ये तो ज्ञान से समझी गई। अब वो मेहर कहते हैं स्वामी जी कि जो तुम्हारे ऊपर, मैं कहना तो नहीं चाहता, क्योंकि जो आदमी किसी पर एहसान करे और बाद में जताने लगे वो ऐसा इंसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं जब तुमने कर्म ही ऐसा कर दिया, कह बैठे हो कि हम जीव हैं और स्वामी जी अक्षातीति नहीं है, तो तुम्हें याद तो कराना पड़ेगा भाई, कुछ तो याद कर हम कौन है। तो क्या लगे, अगर हम अक्षातीत नहीं थे तो ये बताओ शंकर भगवान हमारे चरणों में आके ब्रिज में क्यों गिरा था? और अगर हम अक्षातीत नहीं थे तो ब्रह्मा जी आके चरणों में क्यों गिरे थे? अगर हम अक्षातीत नहीं थे तो सात दिन का कोप तुम्हारे ऊपर इंद्र ने किया, बचाया किसने था? जाहिरी कृपा है ना, शरीर के ऊपर दुख संकट आया था, वो तो ज्ञान की बात नहीं थी। फिर कहते आगासुर आए, भगासुर आए, पूतना आई, कितने संकट ब्रिज में आए, सबको दुनिया को भले वो दुखी कर गए होंगे लेकिन तुम्हारा बाल भी बिका नहीं होने दिया। फिर ब्रिज से रास में गए, महाप्रलय हुआ, सारी सृष्टि को लय कर दिया, लेकिन क्या एक ब्रह्म सृष्टि को भी लय किया? सबको आनंद मंगल से निकाल करके और योग माया में जाकर के नया तन दे करके नई लीला, नया सुख दिखाया जो अक्षय ब्रह्म तरस रहा था जिसके बाद। और फिर कहते हैं अब आए सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने कितने संकट उठाए, किसके वास्ते? इस तातन के लाने के लिए। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयम, हमने उनको ना पहचाना, छोड़ के चले गए। उसके बाद वो राजी शर्मा जी हमसे जुदा तो होने नहीं आकर के अब मेरे चन में बैठे। साहब कहा वहां पर बैठ के कि तुम्हारे सामने जो तन बैठा हुआ है इस तन में आकर के बैठे। फिर कहने लगे चलो भाई, सूरत से निकले दिल्ली आए। कहने लगे जब दिल्ली तुम गए कितने संकट आए, हिंदू थे ना और उन्होंने पहचान भी लिया तुम्हें, और पहचान लिया जब तो सिर्फ थोड़ी सजा ही तो मिली, कत्ल तो नहीं किया, और सिर्फ दंडों से ही तुम्हें मार पड़ी, वो भी 1100 प्रोग्राम साल पहले था। और उसी रात मदीने के दो मुनारे जो है गिर गए। ध्यान के साथ जो सुंदर साल गाली पढ़ते हैं वो खास खास समझेंगे, रोड़ा गिरा रोड़ा बोला बुत खाने का। खोलो मास्टर सागर को, पढ़ो वाणी को, कि जिस रात उस रोड़ा रोड़ा, बिल्कुल शब्द रोड़ा होगा नहीं, रोड़ा है, रोड़ा रोड़ा अद्धा इट्टा। अरे यार पंजाबी बैठे हो, कौन बैठे हो? मैं बोला कह रहा हूँ, आप गिरा कह रहे हैं, मुसीबत तो ये सुनिए, कंगूरा गिरा और बोला कौन? रोड़ा बोला, गिरा कंगूरा। कंगूरा कहते हैं वो उनके वो आगे जो बुर्ज बने होते हैं, हाँ, जो गुमन से जो चार बने होते हैं हर मस्जिद के। तो मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मेरे मोमिन जब परम धाम का ज्ञान लेकर के औरंगजेब के दरबार में जाएंगे तो वो उनके शरीर से पहचान ना करके उनको मारेंगे, और जिस वक्त उनको मार पड़ेगी तो मेरी उस मस्जिद के अगले दो कंगूरे गिरेंगे। तो कंगूरा गिरा और रोड़ा बोला, यानी कंगूरा गिरा तो ईंटें टूट गई, उन टूटी हुई ईंटों में से 24 घंटे तक आवाज आ रही, मुसलमानों कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, नूरी झंडा उठ गया, जबराइल सारी शफकत को लेकर के हिंद में चला गया है जहां इमाम मेहंदी आ चुके हैं। 24 घंटे की आवाज आती रही। अब वहां से मोहर लग के मदीने से ये चिट्ठी दिल्ली आई। अब दिल्ली के काजियों को हकीकत में तो अंदर पता था, लेकिन बादशाह को जाहिर इसलिए नहीं होने देना कि अगर इमाम मेहंदी के आने की इसको खबर हो गई तो ये तुरंत उनके चरणों में चला जाएगा और हमारा शरा तोरा दोनों है, कुर्सियां गद्दियां हमारी छिन जाएंगी और इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए काजियों ने चिट्ठी कहा कि बादशाह सलामत चिंता मत करिए, हम फौज को साथ ले जाते हैं और अरब में जाकर के सारी बात का हवाला करते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि कोई को हमारा प्राण उठा करेगा शरा तोरा के वक्त में। अब गए, कुरान पढ़ा हुआ और वो जो मुनारा दो टूटे थे वो नए बनवा दिए और आकर के रिपोर्ट की थी कि सरकार आंधी चली थी, बिल्डिंग 1100 साल की पहले की पुरानी थी, वो दो मुनारे जो है गिर गए थे, वो हम नए बनवाए। कुरान क्यों कहते हो? अब कुरान उठने का मतलब क्या? कुरान उठ जाने का मतलब किताब के उठ जाने का मतलब नहीं, उसके अंदर जो श्री राज्य महाराज की शक्ति थी, जैसे आज कोई भी सुंदर साथ विश्वास के साथ यकीन आतंक पढ़ के और 5 बार भी ठोंक मार के किसी को जल दे दीजिए, पर देखिए होता क्या, पर यकीन के साथ की बात है। आज का दिन